दिन भर तारीख 10 सितंबर दिन गुरुवार, मैं हूं रेहान फदर। हंगरी से लगी सीमा पर 5,000 प्रवासियों का जमावड़ा, हंगरी की सेना ने अभ्यास किया।
As we heard, Hungary's they have like till 15th of September this month. After that they will close the border and if you pass the border you will be injured.
1965 युद्ध श्रृंखला में आज बात असल उत्तर युद्ध की, जिसमें अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह किए थे।
मैंने अब्दुल हमीद को कहा कि इस टैंक को आप अभी मत गोला मारो, इसको आगे निकल जाने दो। तो वो हमारी पोजीशन में से निकल कर थोड़ा पीछे गया, तो पीछे से फिर अब्दुल हमीद ने इस टैंक को डिस्ट्रॉय किया।
चर्चा होगी गोमांस पर कश्मीर हाई कोर्ट के एक निर्देश पर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। सर्बिया की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान हंगरी से लगी सीमा पर रिकॉर्ड 5,000 प्रवासी इकट्ठा हुए हैं। सरकारी टेलीविजन चैनल का कहना है कि 3,000 लोग हंगरी पहुंच चुके हैं। इस बीच हंगरी की सेना ने दक्षिणी सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रेल सेवा जर्मनी और डेनमार्क के बीच सामान्य हो गई है। उधर ऑस्ट्रिया की रेलवे कंपनी का कहना है कि उसने हंगरी की ओर आने जाने वाली रेल सेवा को स्थगित कर दिया है, क्योंकि जिस संख्या में प्रवासी आ रहे हैं उससे देश में भीड़ बढ़ रही है। जापान में आई बाढ़ और भूस्खलन ने 90,000 लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। पूर्वी जापान में पिछले 2 दिन से हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद प्रशासन ने 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने की सलाह दी है। किनोगावा नदी में पानी के तट तोड़कर आए बहाव में कार और इमारतें बह गईं। इस बीच बुजुर्ग लोगों को छत पर खड़े राहत कर्मियों का इंतजार करते हुए देखा जा सकता था। बाढ़ में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लोगों के लापता होने की भी खबरें हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का कहना है कि सीरिया की ओर जा रहे रूसी विमान सैन्य हथियार और राहत सहायता लेकर जा रहे हैं। उनका कहना था कि ये सैन्य सामान अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है। रूस के अपने सहयोगी राष्ट्रपति बशर अल असद को सैन्य समर्थन बढ़ाने की खबरों के बीच अमरीका और कई यूरोपीय देश इन विमानों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस बीच अमरीका ग्रीस और बुल्गारिया पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस को उनके हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने की अनुमति दे। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि अब ये विमान इराक और ईरान का रूट ले रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का कहना है कि रूस सीरिया को लेकर पारदर्शी है। सीरिया जा रहे विमानों में रूस कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के तहत सैन्य और मानवीय सहायता दे रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अनुमति लेकर ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना था कि मॉस्को बशर अल असद की सरकार का समर्थन करता रहेगा और पश्चिमी देशों पर सत्ता बदलने की नीति का आरोप लगाया है। ये थे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सऊदी अरब के राजनयिक पर बलात्कार के आरोप के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब के राजदूत को बुलाकर बात की है। नेपाली महिलाओं ने सऊदी राजनयिक पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विटर पर जानकारी दी कि मंत्रालय के चीफ प्रोटोकॉल अधिकारी ने आज सुबह सऊदी अरब के राजदूत को तलब किया और इस मामले में गुड़गांव पुलिस के साथ सऊदी दूतावास को सहयोग करने की अपील की। रूस की मुफ्ती परिषद ने कहा है कि वो इस्लाम पर प्रतिबंध लगाने वाले अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। सर्बिया के मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान हंगरी से लगी सीमा पर रिकॉर्ड 5,000 प्रवासी इकट्ठा हो गए हैं। इस बीच प्रवासी संकट से मुकाबले के लिए हंगरी की सेना ने अभ्यास शुरू कर दिया है। सीमा पर हंगरी की सख्ती की खबरों ने प्रवासियों की फिक्र बढ़ा दी है। वहीं यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने यूरोप के देशों से कहा है कि वो प्रवासी संकट के समाधान के वक्त यूरोप के मूल्यों को ध्यान में रखें। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के सार के साथ वात्सल्य राय।
एक तरफ हंगरी से लगी सर्बिया की सीमा पर प्रवासियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हंगरी की सेना ने सीमा के पास अभ्यास शुरू कर दिया है। सर्बिया के मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान हंगरी से लगी सीमा पर रिकॉर्ड 5,000 प्रवासी इकट्ठा हुए। सरकारी टीवी चैनल आरटीएस के मुताबिक उनमें से 3,000 हंगरी में दाखिल हो चुके हैं। वहीं हंगरी की सेना प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सीमा को सुरक्षित करने के लिए अभ्यास में जुटी है। सरकार ने सैनिकों को पुलिस की मदद के लिए सीमा पर भेजने की योजना बनाई है। यहाँ हर दिन सर्बिया से हजारों लोग आ रहे हैं। इनमें से कई प्रवासी ऑस्ट्रिया और जर्मनी का रुख कर रहे हैं। बीती रात 3,500 प्रवासियों ने सीमा पार कर ऑस्ट्रिया का रुख किया। हंगरी की सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाई जा रही है। इस महीने हंगरी के सांसद सीमा पर कड़े नियंत्रण को लेकर मतदान कर सकते हैं। सीमा पर सेना तैनात करने के फैसले का मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया है। इस बीच हंगरी के अधिकारियों को जानकारी दी गई है कि अगले हफ्ते तक 40,000 और प्रवासी आ सकते हैं। हंगरी अपनी सीमा पर सख्ती बढ़ा रहा है। ये जानकारी ग्रीस के लेस्बोस कैंप में रहने वाले प्रवासियों तक भी पहुंच रही है। ऐसी खबरों पर सीरिया के प्रवासी उमर ने कहा,
As we heard, Hungary is, they have like till 15th of September.
जैसा हमने सुना है कि हंगरी 15 सितंबर के बाद अपनी सीमा बंद कर देगा और अगर आपने सीमा पार की तो आपको 3 साल जेल में रहना होगा। हमें ये नहीं पता कि ये सही है या गलत। ये ऐसी अफवाह है जो यहाँ बहुत तेजी से फैल रही है। हकीकत में मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि अगर हम आगे नहीं जा सके तो हमारी वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं है, हम फंस जाएंगे। ये थे सीरिया के प्रवासी उमर के शब्द। इस बीच जर्मनी और डेनमार्क के बीच ट्रेन सेवा सामान्य हो चुकी है। डेनमार्क की सीमा पर पुलिस तलाशी ले रही है, लेकिन लोगों को स्वीडन की यात्रा की इजाजत दी जा रही है। प्रवासी संकट के बीच यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने तुर्की में कहा कि प्रवासी मामले में फैसला लेते वक्त यूरोप के नेताओं को यूरोप के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा,
From this trip I will bring home a number of important messages.
इस यात्रा से मैं कई अहम संदेश लेकर लौटूंगा, जिससे मुझे और यूरोप के दूसरे नेताओं को मौजूदा प्रवासी संकट से निपटने के लिए सही नीति अपनाने में मदद मिलेगी। ये फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा शुरुआती बिंदु स्पष्ट है, एकजुटता और हमारे निर्देशक सिद्धांत। ये थे डोनाल्ड टस्क के शब्द। सीरिया और लीबिया जैसे संघर्ष में घिरे देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी हर दिन हंगरी के जरिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्वीडन का रुख कर रहे हैं।
हंगरी से लगी सीमा पर हजारों प्रवासी पहुंचे। भारत प्रशासित कश्मीर के हाईकोर्ट ने राज्य में गोमांस के सेवन और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है और पुलिस से कहा है कि इसे सख्ती से लागू किया जाए। कश्मीर के धार्मिक संगठनों और अलगाववादी गुटों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
गाय या बैल के गोश्त या गोवंश से जुड़े जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध का ये फैसला यहाँ की शीर्ष अदालत ने परिमोक्ष सेठ नाम के एक वकील की रिट याचिका के जवाब में सुनाया है। फैसले में 1928 में डोगरा शाही के दौरान बने रंबीर पैनल कोड के सेक्शन 298A का संदर्भ पेश करते हुए पुलिस महकमे को आदेश दिया गया है कि वो इस फैसले को सख्ती से लागू करें। गाय, भैंस या बैल के गोश्त को कश्मीर में बड़मास कहते हैं। हालांकि कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में वैसे भी बहुत कम लोग बड़मास पसंद करते थे, लेकिन अदालती फैसले के बाद मजहबी और अलगाववादी वर्गों ने इसे धर्म में हस्तक्षेप जताया है। अलगाववादी गुट मुस्लिम लीग ने अपनी प्रतिक्रिया में बकरीद के दिन लाल चौक में गाय काटने की घोषणा कर दी है।
हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम से कि वो आज की बकरीद पर सिर्फ और सिर्फ गाय की कुर्बानी करें। उससे अर्ज करेंगे कि आप दोहरा सवाब कमाएं, दोहरा सवाब, एक कुर्बानी का, दूसरा कि इंसान का खुद साख्ता कानून और खुद साख्ता पाबंदी तोड़ने का। और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह लाल चौक में गाय की कुर्बानी ईद के रोज करेगी।
सबसे बड़े धार्मिक गुट जमात इस्लामी के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद भट्ट ने तो यहाँ तक कहा कि अगर विधानसभा और भारतीय संसद में भी गोमांस पर प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो भी कश्मीरी इसे नहीं मानेंगे।
ये कबूल नहीं होगा, क्योंकि हमारे अकीदे के खिलाफ है, हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है, और हिंदुस्तान में जो तमाम लोगों के साथ यकसान सलूक करने का जो तरीका है ये उसके खिलाफ है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ।
अल्पसंख्यक वर्गों में इस विवाद को लेकर अलग अलग विचार हैं। कश्मीरी बोलने वाले हिंदुओं या पंडितों के नेता संजय तिकू कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के कारण 26 साल से इस कानून को लागू नहीं किया गया था। ताहम वो कहते हैं कि इस बारे में बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है ताकि दोनों तरफ की धार्मिक भावनाओं का मान रखा जाए।
जहां जहां भी ये बीफ भेजा जाता था वहां पे एक पर्दा हुआ करता था, उसमें एक जाली हुई करती थी जिसे ये पता चलता था कि ये बीफ की दुकान है। तो इस वजह से जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे वो ज्यादा हर्ट नहीं होते थे एक माइनॉरिटी के लिए, स्पेशली जो बीफ नहीं खाते हैं।
सिखों के जाने माने नेता जगमोहन सिंह रैना का कहना है कि ये फैसला उसी धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करता है जिसका आश्वासन खुद भारतीय संविधान में है।
तो मेरा तो ये आइडिया है कि ये जो देश हिंदुस्तान हमारा बनना है ना, ये कंपोजिशन ऑफ सो मेनी रिलीजन ग्रुप्स, इस लिहाज से हर आदमी की जो अपनी आजादी है ना वो किसी भी तरह से वो रुकनी नहीं चाहिए। तो इट्स नॉट फेयर कि भाई ये जो इन्होंने मीट बैन किया है कोर्ट ने, ये आजादी के ऊपर एक हमारे ऊपर एक सलब है, हमारे ऊपर एक जंजीरें जैसे जकड़ने का मामला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
गौरतलब है कि 35 वर्ष पहले इसी तरह के प्रतिबंध के विरोध में उस वक्त के मजहबी नेता काजी निसार ने सरेआम दक्षिणी कश्मीर में गाय काट के कश्मीर में आंदोलन शुरू किया था जो कई महीनों तक जारी रहा। इस सिलसिले में अगला कदम तय करने के लिए तमाम विचारधाराओं के धार्मिक गुटों की एक बैठक 12 सितंबर को बुलाई गई है। इस बीच गुज्जर महासभा के नेता और बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता इशफाकुर रहमान पोसवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
उधर राजस्थान से खबर आ रही है कि वहां पर हिंदू और जैन त्योहारों पर 3 दिन के लिए मास्क की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नागरिक अधिकार संगठनों ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया है। आइए सीधे चलते हैं जयपुर नारायण बारेठ के पास। नारायण, बताएं क्या पृष्ठभूमि है इस प्रतिबंध की?
ये दो त्यौहार है 17-18 सितंबर और 27 सितंबर को, जैन और हिंदू। इस मौके पे सरकार ने आदेश जारी करके कहा कि मांस की दुकानें बंद रहेगी, कोई मांसाहार नहीं होगा। और इसकी तीखी प्रतिक्रिया न केवल अल्पसंख्यक समुदाय में हुई है, नागरिक अधिकार संगठनों ने भी कहा है कि यह संविधान में मिली आजादी का अपहरण है। सरकार ने इसको जायज ठहराया है, लेकिन बाकी संगठनों का कहना है कि वो इसको चुनौती देंगे और इसका विरोध करेंगे। दूसरा विवाद दीनदयाल उपाध्याय जयंती को लेकर नया खड़ा हो गया। ईद के दिन सरकार ने कहा कि कॉलेजेज में संकल्प पत्र भराए जाएंगे रक्तदान को लेकर, इसमें भी मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति की है। और सिविल राइट ग्रुप ने भी कहा है कि सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, ईद है, वो खुशी का त्यौहार है, उस दिन आप कोई फैसला थोप नहीं सकते। तो दोनों पक्ष आमने सामने है। सरकार ने कहा कि उनकी कोई दुर्भावना नहीं है, वो केवल सामाजिक सौहार्द के लिए ये कदम उठा रही है, लेकिन इस पे बाकी समुदाय है वो यकीन करने को तैयार नहीं है। हमारी जमायत इस्लामी के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि सरकार अपने एक एजेंडे पे काम कर रही है और समुदायों को आपस में आमने सामने का इसे एक कदम मान रहे हैं वो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका नारायण बारेठ।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। 1965 का युद्ध, असल उत्तर की लड़ाई को दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान के 100 से अधिक टैंक तबाह हुए थे, जिन्हें भिकीविन गांव ले जाया गया था और बाद में इसे पैटन नगर का नाम दिया गया था। इसी लड़ाई में क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 टैंकों को ध्वस्त किया था और इसके लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्या खास बात थी असल उत्तर की लड़ाई की, आइए सुनते हैं 1965 की लड़ाई की 10वीं कड़ी में। सितंबर 1965 को असल उत्तर और चीमा के बीच कपास और गन्ने के खेतों में लेटे हुए 4 ग्रेनेडियर्स के जवानों को आते हुए कुछ पाकिस्तानी टैंकों की आवाज सुनाई दी। सड़क से 30 मीटर दूर क्वार्टर मास्टर हमीद कपास के पौधों के बीच अपनी जीप पर आरसीएल गन के साथ छिपे हुए थे। जैसे ही पैटन टैंक उनकी रेंज में आया, हमीद ने उस पर फायर किया। उस समय सिर्फ 20 गज की दूरी से ये नजारा देख रहे कर्नल हरिराम जानू याद करते हैं।
3 टैंक सड़क के ऊपर, 1 टैंक सबसे आगे और 2 टैंक उसके पीछे पीछे सड़क पर आते हुए हमारी तरफ आए। हमने पहले से वो पोजीशन ले रखी थी। जैसे ही पता लगा कि टैंक आ रहे हैं, अब्दुल हमीद को मैंने आवाज दी, उसने कहा कि ऐसा मैं देख सकता हूँ। पहला टैंक करीबन 200 गज पर जब आया तो अमीन ने अपनी आर्चिल गन उससे एक गोला फायर किया। फायर करते ही वो गोला पहले टैंक का लगा और उसमें आग लग गई। आग लगने से पीछे के जो दो टैंक थे वो भी रुक गए और उसका जो क्रू था, हमें ताजुब हुआ वो देख करके कि पीछे वाले टैंक के जो दो क्रू थे वो टैंक छोड़ करके भाग गए और पहला टैंक जो डिस्ट्रॉय होगा उसका क्रू तो टैंक के अंदर ही मारा गया।
106 mm RCL गन टैंकों के खिलाफ एक बहुत प्रभावशाली हथियार है, लेकिन इसकी एक कमी यह है कि इसे फायर करने के बाद छिपाया नहीं जा सकता। असल उत्तर युद्ध में भाग लेने वाले कर्नल रसूल खां कहते हैं,
106 mm कैलिबर और स्मूथ बोर, मतलब पीछे भी खुला और रेंज इसकी 500-600 गज दिखाई देने पर है। बहुत इफेक्टिव कारगर टैंकों के खिलाफ हथियार है। अगर टैंक के लग जाए ना तो फिर टैंक बचता नहीं, आग लग जाती है उसमें। लेकिन उसमें एक बड़ी जबरदस्त कमी है, वो ये है कि जब वो फायर करता है ना तो उसका शोला पीछे 45 मीटर तक जाता है। दूर से पता चल जाता है कि भैया यहाँ RCL गन है, और टैंकों को एक दफा पता चल जाए ना फिर RCL गन की जिंदगी खत्म। यानी कि हम ये मानते हैं कि RCL गन की लाइफ एक राउंड ले, फायर कर दिया तो बहुत है, दो कर दिया तो बहुत है, और तीन कर दिया तो बहुत ही ज्यादा है।
इसके बावजूद हमीद ने उसी दिन पाकिस्तान का दूसरा पैटर्न टैंक भी नष्ट किया। अगले दिन इंजीनियर कंपनी ने एंटी टैंक माइंस लगाई ही थी कि पाकिस्तानी साइबर जेट्स ने भारतीय ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। अगले दिन यानी 10 सितंबर को पाकिस्तानियों ने सुबह 6:30 बजे ही तोपखाने से भारी गोलाबारी शुरू कर दी।
सुबह 6 बजे ही बहुत हैवी आर्टिलरी के गोले आकर गिरने लगे हमारे ऊपर, क्योंकि उनको पता लग गया कि यहाँ पर कोई डिफेंडेड लोकेलिटी है और यहाँ पर हिंदुस्तान की कोई फौज बैठी हुई है। तो 10 तारीख वॉज द क्रूशियल डे हमारे लिए, सबसे भयंकर दिन समझो ये। हमने सोचा था कि जब इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग होती है तो इन्फेंट्री का हमला, हम सोचते हैं कि इन्फेंट्री का हमला होएगा, तो उसके लिए हमने फिर अपने जवानों को तैयार किया कि अब आप जो है, अभी तक तो टैंक आ रहे थे, अब जो इन्फेंट्री का हमला होएगा तो उसके लिए तैयार हो जाओ। आर्टिलरी का फायर हुआ घंटे भर, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद थोड़ी देर करीबन घंटा डेढ़ घंटा कुछ नहीं हुआ, तो हमने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर अचानक 8:30 बजे फिर उसी तरीके से जैसे 8 और 9 तारीख को हुआ, उनका पहला टैंक हमला हुआ। तो इसमें पहला टैंक जैसे ही आया तो इस टाइम मैंने अब्दुल हमीद को कहा कि इस टैंक को आप अभी मत गोला मारो, इसको आगे निकल जाने दो। तो वो हमारी पोजीशन में से निकल कर थोड़ा पीछे गया, तो पीछे से फिर अब्दुल हमीद ने इस टैंक को डिस्ट्रॉय किया। और इस टैंक को ऐसे डिस्ट्रॉय करने से हमें ये फायदा हुआ कि ये रेजिमेंटल कमांडर का टैंक था पाकिस्तान फोर्स का, और उसने जैसे ही वहां से थोड़ा आगे गया, एक माइलस्टोन था तो पीछे मैसेज पास किया कि क्रॉस माइलस्टोन इतना इतना, कोई आगे अपोजिशन नहीं है और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये मैसेज जैसे ही पास हुआ उसका टैंक डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी के टैंक वैसे ही छोड़ करके फिर भाग गए।
हमीद ने दो और पैटर्न टैंक बर्बाद किए, तीसरे पर वो निशाना लगा ही रहे थे कि उसने उन्हें देख लिया।
दोनों का निशाना एक साथ साधा, दोनों ने गोले एक साथ चलाए, तो टैंक के गोले ने अब्दुल हमीद की जीप को और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इसके गोले ने पाकिस्तानी टैंक को तोड़ दिया, तो दोनों ही खत्म हो गए। मेरी ट्रेंड जो थी वो अब्दुल हमीद की पोजीशन से मुश्किल से 20 गज की दूरी पर थी, और मैं बैठा सब ये देख रहा था।
मोहम्मद नसीम उस समय हमीद के ड्राइवर थे, उन्हें वो दिन अभी भी याद है।
10:30 बजे का ये वाकया कि इनकी ट्राइगर के ऊपर उंगली रखे रहे और उधर से कनक बम आ गया और सीने को फाड़ता हुआ आधा कनम के हिस्सा इनका हवा में उड़ गया और आधी लाश वहां बच गई। उसके बाद हमारी गाड़ी में आग लग जाती है, आग लगने के बाद बहुत बड़ा टारगेट बनता है। उसके बाद 7 हवाई जहाज आते हैं पाकिस्तानी, वो भी खूब बौछार करते हैं, उससे भी किसी सूरत से हम बचे। जब ये चले जाते हैं तो फिर हमने ये रिपोर्ट दिया रसूल साहब को, हमारे पीछे थे ब्रेव कंपनी में। इन्होंने कहा क्या बोल रहे हो नसीम, मैंने कहा सच बोल रहा हूँ, ये देखिए का नाम किस तरीके से कारनामा है। वहाँ से आया कई अफसर आए बटालियन हेडक्वार्टर से, हमने रिपोर्ट दिया कि हमें खत्म हो गए, गाड़ी में आग लग गई, ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, चल के दिखाओ। तो जहाँ पर वो जल रहा था साहब, हमारे का नाम कुछ पर बिस्तर थे और का नाम के कपड़े उपड़े थे, वर्दी वगैरह थी। हम फिर वो राख हटाने लगे तो उसकी पसलियां जो थी उसमें हमारी उंगली घुस गई और हम हाथ झटकते हुए, तो बोलो अफसरों ने फिर कहा अरे नहीं نسیم رہنے دو, ہاں یہ تو ختم ہو گیا. ہم کہا اور ثابوت چاہتے ہو صاحب تو تھوڑی دور پر سے جا کے ہم ان کا سر لے آئے. پھر ڈھونڈ کے اسی کپاس میں سے ہم کا نام دونوں پیر لے آئے ان کے, سب وہیں پر اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد پھر کا نام کے لوگوں نے مولانا صاحب کو بلایا. مولانا صاحب کو بلا کے وہی فاتحہ تھوڑا پڑھا وڑھا, پڑھ کے اپنا کا نام تھوڑی سی پھوڑا تھا, پھوڑا لے کے اس پر مٹی وٹی ڈال کے وہیں پھینک دیا گیا.
لیکن لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. کرنل جانو نے فور گرینیڈیئرز کے سینکوں شفیق, نوشاد اور سلیمان کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ پاکستانیوں پر گولی نہ چلائیں. تبھی انہیں پاکستانیوں کی طرف سے ایک جیپ آتی ہوئی دکھائی دی.
یہ جیپ آنے کے تھوڑی دیر بعد میں دو جیپ اور آئی. پہلی جیپ میں چار آدمی بیٹھے تھے, اس کے پیچھے اور جیپ تھی. جیسے یہ جیپ آئی جن جوانوں نے فائر کیا تھا اس میں سے ایک جوان ٹرینچ کے اندر کھڑا ہو گیا. تو اس کو دیکھ کر پہلی جیپ وہاں پر روکی گئی. جیپ ڈرائیور کے سائڈ میں بیٹھا تھا, اس نے آواز لگا کر کہا کہ یہ جوان ادھر آؤ. وہ جوان گیا نہیں تو وہ جیپ سے اتر کر کے اور آیا اس ٹرینچ کی طرف, اپنا ریوالور نکالنے لگا. تب باقی دونوں جوان اور کھڑے ہو گئے اور وہ ایل ایم جی اور اپنی رائفل کا نشانہ لے کر رکھے تھے اور باقی میرے ایم ایم جی وغیرہ لگی تھی ان کا نشان ہوتا. تب میں نے دیکھا کہ تو گڑبڑ ہونے والی ہے, تو میں نے کہا ریپیڈ فائر. فائر کرتے ہی ایم این جی اور یہ ایل ایم جی انہوں نے فائر کیا تو جو آدمی ہماری طرف آ رہا تھا اس کے گولی کا بس لگا اور جا کر کے دوسری طرف گر گیا روڈ کے. جیپ کے ڈرائیور نے ٹرن کیا اور واپس جانے کے لیے تو اس کے سر میں ایک بس لگا تو جیپ میں ہی وہ لڑک گیا وہیں پر. پیچھے والی جو جیپ تھی وہ ٹرن کی, ٹرن میں اس کے بیٹھے ہوئے کچھ جوان مارے گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گئی. تو اس کے بعد تھوڑی دیر شانتی ہوئی تو ہم نے ریڈیو کے اوپر انٹرسپٹ کیا, یہ جو جیپ بھاگ کر گئی تھی اس نے کہا کہ بڑا امام مارا گیا. بڑا امام مطلب کہ ان کا جو سب سے بڑا کمانڈر تھا فوج کا وہ مارا گیا.
3 بجے کے آس پاس پاکستانی ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ پھر سنائی دی. اس بار 8 ٹینک آ رہے تھے اور ہر ایک ٹینک پر 20-20 سینک سوار تھے.
اب کی بار جو ٹینک آئے ان کو دیکھنے سے ہمیں لگا کہ اب کی بار یہ انفینٹری کا حملہ ہوگا ہمارے اوپر. تو یہ ٹینک میری کمپنی کے ساتھ روڈ کے اوپر قریب 50 گز پیچھے سے کھڑے ہونے شروع ہوئے. ہر ٹینک کے بیچ میں 5-5 گز کا فاصلہ کر کے, تو میں نے قریب 8 ٹینک کاؤنٹ کے, باقی اور بھی ہوں گے. وہاں رکنے کے بعد وہ چلانے لگے کہ جنرل صاحب ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں کہاں. تو بیچ کے ٹینکوں میں سے جوان اترے اور کریم دونوں طرف 4 باڈی اٹھا کر کے ٹینک پر رکھی. تب مجھے پتا لگا کہ ہاں یہ ریکور کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میری کمپنی پوزیشن کے بیچ میں تھے تو میں نے پھر اپنے ایڈجوٹنٹ کو کہا کہ مجھے ایس او ایس فائر چاہیے. ایس او ایس فائر کا مطلب ہے ریڈ اوور ریڈ, مطلب کہ سیو اور سول. جب دشمن ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے اور ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم بچیں گے تو ہم پھر وہ آرٹلری کا اپنا فائر منگاتے ہیں. تو وہ فائر پھر میری کمپنی کے اوپر آیا. وہ جیسے ہی اپنے آرٹلری کے گولے گرنے لگے ایک دم سے چاروں طرف شور شراب ہو گیا. تو یہ پاکستانی اپنے ٹینک اٹھا کر کے واپس بھاگ گئے. وہ جیسے واپس بھاگے تو ان میں 3 ٹینک جو ہے اپنے گولے سے ڈسٹروئے ہو گئے.
جیسے ہی پاکستانی ٹینک واپس ہوئے گرینیڈیئرز اپنی کھندکوں سے باہر نکل آئے. کھیت میں انہیں پاکستانی جی او سی کی جیپ ملی جس کے اگلی سیٹ پر پاکستانی کمانڈر بریگیڈیئر شمیم کا شب پڑا ہوا تھا. رچنا بشت اپنی کتاب اسٹوریز فرام انڈو پاک وار آف 1965 میں لکھتی ہیں کہ یدھ ورام کے بعد بھارتی سینکوں نے کچھ پاکستانی سینکوں کو سفید جھنڈا لیے ہوئے آگے بڑھتے دیکھا.
ایک وائٹ فلیگ لے کے کچھ پاکستانی سپاہی آ رہے تھے اور ایک سفید لباس میں ایک لیڈی تھی ان کے ساتھ میں. تو جب وہ ان کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ اس آفیسر کی وائف تھیں اور وہ ان کی باڈی مانگنے کے لیے آئی تھیں. تو کرنل جانو نے کہا کہ باڈی تو بائی دیٹ ٹائم ہیڈ آلریڈی مووڈ ٹو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور اس کو پورے ملٹری آنرز کے ساتھ دفنا دیا گیا تھا. وہ لیڈی آئیں پھر وہاں پہ کرسیاں لگائی گئیں اور وہ بیٹھ کے چائے پی انہوں نے ان کے ساتھ میں اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ہسبینڈ بہت بہادری سے لڑے تھے, وہ بہت بہادر سپاہی تھے. میں آپ کو ان کی باڈی تو نہیں دے سکتا بٹ آئی کین اشیور یو دیٹ ان کو بیری کیا گیا ہے پورے سمان کے ساتھ میں اور میں آپ کو صرف ایک کپ چائے پلا سکتا ہوں. تو وہ لیڈی ان کے ساتھ ایک کپ چائے پی کر کے واپس گئیں.
اس لڑائی کے دوران بھارتی سینکوں نے پاس کی ایک نہر کا کنارہ کھول دیا جس سے پورے علاقے میں پانی بھر گیا, جس کی وجہ سے بچے کھچے پاکستانی ٹینک بھی وہیں پھنس کر رہ گئے. पाकिस्तानी टैंकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कर्नल सालिब ने ब्रिगेड कमांडर से अनुरोध किया कि पैटर्न टैंकों पर पेंट से गिनती लिखी जाए ताकि उन्हें गिनने में आसानी हो। उसी समय पाकिस्तान में अयूब खान अपने सूचना सचिव अल्ताफ गौहर को खेमकरण सेक्टर में बढ़ती पाकिस्तानी सेना के मूव समझा रहे थे कि उनके सैनिक सचिव जनरल रफी बदहवास हालत में कमरे में घुसे और लगभग चिल्लाते हुए बोले, भारतीयों ने मधुपुर नहर को खोल दिया है। अल्ताफ गौहर ने अयूब पर लिखी अपनी किताब में लिखा,
अयूब सारी ब्रीफिंग भूल गए। वो जानना चाहते थे कि पूरे इलाके को जलमग्न होने में कितना समय लगेगा। मैंने गुलाम इसहाक खां को फोन मिलाया, जो उस समय वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख थे। उन्होंने पुराने सिंचाई रिकॉर्ड्स के आधार पर हिसाब लगाया कि पूरे इलाके में 8 घंटे में पानी भर जाएगा। अयूब ये जानकर भौंचक के रह गए कि जनरल नासिर ने ये सोचा ही नहीं था कि भारत टैंकों को रोकने के लिए इस तरकीब का सहारा लेगा। 11 सितंबर को खेमकरण में पाकिस्तानी हमला रोक दिया गया और इसी के साथ पाकिस्तान की सारी रणनीति नाकामयाब हो गई। पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से युद्ध का अंत था।
भिकी विंड को जहां सारे नष्ट पैटर्न टैंकों को जमा किया गया, पैटर्न नगर का नाम दिया गया। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र दिया गया। उनकी पत्नी रसूलन बीबी इस समय 86 साल की हैं। वो अब ठीक से सुन नहीं सकती, लेकिन बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा,
दुख बहुत भयल, लेकिन हम इतना सोच देनी, हमके बहुत खुशी भयल कि हमारे आदमी इतना नाम कैसे चल गई ना। कहने की जायदाद दुनिया में आदमी मर जाते तो केहू का नाम ना रहता। हमारे आदमी के इतना नाम कैसे ना कोने कोने शहीद हो गई ना।
अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान, साथी मुबारक तुम्हें ये जश्न हो जीत का, बस इतना याद रहे।
ये कार्यक्रम आप दोबारा सुन सकते हैं कल सुबह विश्व भारती कार्यक्रम में। और अब एक नजर खेल समाचारों पर राखी शर्मा के साथ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात यूएस ओपन की। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में भारत के पास दोहरी सफलता पाने का मौका है। महिला डबल्स में सानिया मिर्जा के फाइनल में पहुंचने के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी लियांडर पेस मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। लियांडर पेस ने अपनी स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर सेमीफाइनल में भारत के ही रोहन बोपन्ना और उनकी चीनी ताइपे जोड़ीदार यूंग जे चेन को हराया। पहला सेट पेस हिंगिस ने 6-2 से जीता, लेकिन दूसरा सेट इतना आसान नहीं था। दूसरे सेट में एक समय दोनों जोड़ियां 3-3 से बराबर थीं, फिर 5-5 से बराबरी हुई। आखिरकार पेस हिंगिस ने मैच 6-2 7-5 से जीता। इस साल पेस हिंगिस के साथ मिलकर विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने फ्रांस के रिचर्ड गास्केट को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। फेडरर ने ये मुकाबला 6-3 6-3 6-1 से जीता। फाइनल के लिए फेडरर का सामना हमवतन स्टैन वावरिंका से होगा। वावरिंका इस साल फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं। उनसे मुकाबले पर फेडरर कहते हैं,
I'm happy I found that level of play and got 2 slams, got Davis Cup, got Olympic gold.
मुझे खुशी है वो अच्छा खेल रहे हैं। वो करियर में 2 ग्रैंड स्लैम, डेविस कप और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। उनका करियर शानदार है। मैं उनके खिलाफ खेलने को लेकर उत्साहित हूँ। वो मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। फ्रेंच ओपन में मैं उनसे हार गया था। उम्मीद करता हूँ इस बार गलती नहीं होगी।
और वहीं बैडमिंटन में भारत के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। पीवी सिंधु और ज्वाला गुट्टा जैसे खिलाड़ियों के बाद जापान ओपन सुपर सीरीज से भारतीय टॉप सीड खिलाड़ी साइना नेहवाल, एचएस प्रणॉय और के श्रीकांत हारकर बाहर हो गए। दूसरे दौर में साइना नेहवाल घरेलू खिलाड़ी मिनात्सु मितानी से 13-21 16-21 से हार गयी। प्रणॉय को कोरिया के ली डोंग क्यून से 9-21 16-21 से मात मिली। वहीं श्रीकांत को भारत के ही पी कश्यप ने 21-11 21-19 से हराकर बाहर किया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
चलते चलते एक नजर विश्व समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। सर्बिया की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान हंगरी से लगी सीमा पर रिकॉर्ड 5,000 प्रवासी इकट्ठा हुए हैं। जापान में आई बाढ़ और भूस्खलन ने 90,000 लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव का कहना है कि सीरिया की ओर जा रहे रूसी विमान सैन्य हथियार और राहत सहायता लेकर जा रहे हैं। ब्रिटेन में दो इस्लामिक शिक्षकों के 10 साल के लड़के को पीटने के लिए 1 साल की सजा सुनाई गई है। इन शिक्षकों का आरोप था कि इस लड़के ने बर्मिंघम में इस्लामिक स्कूल की क्लास में कुरान का अपमान किया था। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने प्रतिबंधित अंसारुल्लाह बंगला टीम के प्रमुख और दो अन्य लोगों को दो ब्लॉगर की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सऊदी अरब के राजनयिक पर बलात्कार के आरोप के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब के राजदूत को बुलाकर बात की है। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।